पादम तत् सर्वतः अके शिरः मुखम सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वत पाणिपादं तत् सर्वत अखिशिरमुखम् सर्वत श्रुतिमत् लोके सर्वमावृत तिष्ठति सर्वत पाणिपादं तत् सर्वत अखिशिरमुखम् सर्वत्र श्रुमतं लोके सर्वमावृत तिष्ठति सर्वत पाणिपादं तत् सर्वत अखिशिरमुखम् सर्वत श्रुतिमत् लोके सर्वामृत तिष्ठति सर्वत पाणिपादं तत् सर्वत अखिशिरमुखम् सर्वत श्रुतिमत् लोके सर्वमावृत तिष्ठति सर्वत पाणिपादं तत् सर्वत अखिशिरमुखम् सर्वत श्रुतिमत् लोके सर्वमावृत तिष्ठति शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ सर्वतः सर्वत्र पाणी हाथ पादम पैर तत् बह सर्वतः सर्वत्र अखे आंखे सिरह सिर मुखम मुंह सर्वतः सर्वत्र श्रुतिमत् कानों से युक्त लोके संसार में सर्वम हर वस्तु आवृत्य व्याप्त करके तिष्ठते अवस्थित है। अनुवाद उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तात्पर्य जिस प्रकार सूर्य अपने अनंत शक्तियों के विकिरण करके स्थित है उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपनी सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं। यदि उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है। उनके अनंत सिर हाथ पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है। वे सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता है कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। ये संभव नहीं है। यदि वो अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वो उसी स्थिति में आ जाएगा कि उसका ऐसा सोचना उल्टा है। उसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्रम पुष्पम या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यदि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित है, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनका शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता के पांचवा अध्याय के 37 नंबर श्लोक में कहा गया है, गोलोक एवो निजसत्म खिलात्म भूत हो। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता है कि वो सर्वव्याप है। अतएव इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुक्त पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवश्च श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का प्रारंभ में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, भगवान पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये जो 6 प्रश्न पूछा था उसका क्रमबद्ध से भगवान उत्तर दे रहे हैं। और भगवान ने उससे पहले बता चुके हैं कि ये शरीर क्षेत्र है और ये शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। और ये शरीर और आत्मा के बीच में भेद को जो जानना है उसको आत्मा ज्ञान कहते हैं। और अभी वो जानने का जो विषय वस्तु है ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो उससे पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं 13 नंबर में कि मैं अभी आपको जानने का योग्य जो विषय वस्तु है उसके बारे में बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें ज्ञेयों के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है उस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यहां पर भगवान अभी जानने का जो विषय वस्तु है वो आत्मा और परमात्मा बीच में भेद अभी उसका वर्णन करना भगवान आरंभ कर रहे हैं। तो उससे पहले भगवान जो बताया ये शरीर है 24 तत्वों से बनी हुई है, लेकिन उसमें जो जीवात्मा है आत्मा है पृथक है। जीवात्मा स्वभाव से सच्चित आनंदमय है। सत का अर्थ है शाश्वत, चित का अर्थ है ज्ञानमय और आनंद का अर्थ है परम आनंदमय है। तो जब भी इस आध्यात्मिक जगत में रहता है जीवात्मा तो वहां पर उसका शरीर भी सच्चित आनंदमय रहता है। जब भी किसी कारणवश इस जगत में आ जाता है तो आत्मा तो सच्चित आनंदमय रहता है, लेकिन उसको जो शरीर प्राप्त होता है वो भौतिक होता है। और ये 24 तत्वों वाला शरीर में बंध जाता है, इसके लिए उसको बद्ध जीव कहते हैं, क्योंकि ये 24 तत्वों वाले वस्तु है उसमें ये जीवात्मा बन जाता है, इसके लिए उसको बद्ध जीव बोलते हैं। तो इसके लिए भगवान ये जो शरीर का जो 24 तत्व है उसके बारे में वर्णन किए, महाभूतानि अहंकार बुद्धि एवक्त एवच इंद्रियाणि दश एकम च पंचोच इंद्रियो गोचरा, और उसका जो विकार है उसके बारे में वर्णन करने के बाद ये जो 24 तत्व वाले शरीर से कैसा वो मुक्त होके भगवत का धाम में जाके भगवान का सेवा में पूर्ण निजुक्त हो सकता है उसका प्रक्रिया बताए हैं 8 से लेके 12 नंबर श्लोक तक। तो उसके लिए हमारा ये जो भौतिक शरीर बद्ध जीव का जो बंधन का कारण है उसका मुख्य कारण है अज्ञान, और इसी अज्ञान के कारण ही मनुष्य विभिन्न प्रकार का दुख भोगता है। हमारे ग्रंथ है जिसको नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें बताया गया है भक्ति करने से 6 प्रकार का लाभ होता है। पहले जो लाभ है बताए क्लेशाग्नि, मनुष्यों का जो क्लेश होता है दुख होता है वो दूर होता है। दूसरा बताया गया है शुभदा, सभी प्रकार का शुभ उसका उदय होता है, और सुदुर्लभा बोलेगा तो ऐसा जो है भगवान का सेवा करने से सुदुर्लभता की प्राप्त होती है, और मुख्य लघुदाकृत बोलेगा तो जो भगवान का मुक्ति 5 प्रकार का मुक्ति उसके सामने तुच्छ अनुभव होता है, और एक गुण जो होता है उसका साधनानंद विशेष आत्मा, तो ऐसा आनंद है और वो उसको छोड़ नहीं पाता है, और कृष्ण आकर्षणी। इस प्रकार भगवान का भक्ति करने से ये 6 लक्षण प्रकट होता है। पहला जो लक्षण है क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि का अर्थ मनुष्य का अनेक प्रकार का दुख कष्ट क्यों होता है, तो ये जो दुख कष्ट भोगने का जीवात्मा का 3 कारण बताया गया है। उसमें बताया गया एक तो पाप, दूसरा संसार में भोग करने की प्रवृत्ति, तीसरा जो बताया गया अज्ञान। तो अज्ञान के कारण ही जीवात्मा ये संसार में बन जाता है और अनेक प्रकार की दुख कष्ट को भोग करता है। तो ये अज्ञान के 5 प्रक्रिया है, 5 विभाग है उसका। जब ये जीवात्मा फंस जाते अज्ञान के कारण, उसमें पहला बताया गया अज्ञान, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है अधिनिवेश, चौथा है राग, और 5 है द्वेष, जिसके कारण दुख भोगता है, जिसका मुख्य कारण है कि अज्ञान है, उसका 5 विभाग है। अज्ञान, अस्मिता, अधिनिवेश, राग और द्वेष। अज्ञान क्या है, हम भूल जाना कि मैं भगवान का सेवक हूं, उसको कहते हैं अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है, अज्ञान का परिभाषा की गई है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि हम लोग भगवान को भूल जाने का ही अज्ञान है। अस्मिता का अर्थ है, जब भगवान को भूल जाता है हम अपना पहचान विभिन्न रूप से देते हैं, वो है अस्मिता। अभी किसी को भी पूछेंगे तो अपना परिचय, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मैं बंगाल का हूं, ओडिशा का हूं, या भारतीय हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, ऐसा जो भगवान का दास को छोड़ के अलग अलग अपना पहचान करना, वो बोलते अस्मिता। भगवान को भूल जाना अज्ञान है, अलग अलग पहचान बनाना वो अस्मिता है। अधिनिवेश का अर्थ है, उसमें संपूर्ण रूप से उसी में आसक्त हो जाना, अधिनिवेश बोलो संपूर्ण रूप से उसमें मन लग जाना। जैसे ही अभी समझो कोई सोच रहा है मैं भारतीय है, अभी समझो कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, वो हार जाएगा तो बहुत दुखी हो जाता है। अभी कोई समझो सोचता है मैं पिता हूं, उसको पुत्र को 2-3 तमाशा मार दीजिए, मेरा पुत्र को मारा बोल के वो आपके साथ झगड़ा करने लगेगा, क्योंकि वो पिता का उसके अधिनिवेश है, उसमें पूरा वो निवेश हो गया, उसको खो गया है कि मैं उस पुत्र हूं। ऐसा हमारा निजी अनुभव है। एक बार हमारा पास एक आदमी काम कर रहा था, तो उसका बच्चे का कुछ हृदय का समस्या हो गया, हार्ट का, तो आके हमको बता रहा था कि हमारा बच्चा जब बोलता है पापा ऐसा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो बोला मेरा आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, मेरा मन में ऐसा विचार आता है मेरा किडनी बेच के उसका इलाज करूं। तो पिता का कितना अधिनिवेश है, अज्ञान है। तो हम वो जब ये पढ़ रहे थे शास्त्र को और उसका बात को समालोचना कर रहे थे, थोड़ा चिंतन कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि इतना अधिनिवेश हो जाता है। तो जो आदमी सोचता है उसी में अधिनिवेश हो जाता है। अगर वो अभी केवल जय महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र का, फिर वो अभी कुछ उत्तर प्रदेश का लोग रहते थे उनको मार के कुछ भगा रहे थे, बिहार का लोग भगा रहे थे, क्योंकि उनका अधिनिवेश है। अभी जैसा पाकिस्तान में बोलते हैं यहाँ पर कभी मुसलमान लोग रह सकते हैं, हिंदू लोग नहीं रह सकते, मारामारी कर रहे हैं, बहुत जगह में चल रहा है ना, उसको अधिनिवेश बोलते हैं। एक चीज में संपूर्ण रूप से उसका मनोनिवेश हो जाना, उसे खुद कुछ सोचना नहीं, वो मुख्य एक दुख का कारण है, उसको अधिनिवेश बोलते हैं। फिर क्या है, राग बोलते हैं। राग का अर्थ है आसक्ति। जैसे आप सुनेंगे बैरागी बोलते हैं, बैरागी का अर्थ है जिनको आसक्ति नहीं है। तो फिर जब ये जो भी समझो पहचान अपने को बनाता है तो उसी में वो संपूर्ण रूप से आसक्त हो जाता है, और उस आसक्ति में कुछ बाधा होता है तो उससे वो द्वेष करने लगता है। तो ये है एक दुख का मुख्य कारण, अज्ञान। इसके लिए, ये अज्ञान से मुक्त करने के लिए भगवान ने यहां ज्ञान की प्रक्रिया की व्याख्या की है। उसमें भगवान बता रहे हैं विनम्रता, सहिष्णुता, अहिंसा, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, जन्म मृत्यु जारा व्याधि का दुख का अनुभव करना, तो ये सब ज्ञान है जिसके कारण हम धीरे धीरे ये देहात्मा बुद्धि से बाहर आ सकते हैं। उसमें एक बताया गया विनम्रता, विनम्रता कि सम्मान की इच्छा नहीं करना, और कोई कितना भी अपमान करेगा उसको सहनशील सह लेना। तो उसके बारे में एक गौतम बुद्ध की जीवन की कथा है। जय श्री श्री गौर नित्याय भगवान की जय, श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान महाराज की जय। मंदिर का पट केवल 20 मिनट के लिए बंद हुआ है भगवान को भोग अर्पण करने के लिए। मंदिर का पट फिर 8:30 बजे खुलेगा और ठाकुर जी का शयन आरती होगा। जो लोग फिर शयन आरती में भाग लेना चाहते हैं वो फिर बैठ सकते हैं और भगवद गीता के ऊपर कुछ चर्चा चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का इसके बारे में एक शिक्षणीय कथा है। गौतम बुद्ध एक बार दक्षिण भारत की भ्रमण जा रहे थे, कुछ शिष्यों के अपने साथ में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनको बहुत भला बुरा कहा, कट्टु वचन बोला, लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ उनको जवाब भी नहीं दिया और कुछ प्रतिकार भी नहीं किए। वो बहुत प्रकार गाली दे रहा था, कट्टु वचन बोल रहा था, वो कुछ बोले नहीं, फिर वो आगे चले गए। आगे चले जाने के बाद उनका शिष्य जो साथ में था उन लोग आश्चर्य हुआ। उसमें उनका एक शिष्य ने उनको जिज्ञासा की, उन्होंने इतना कट्टु वचन बोला, आपको गाली दिया, आपने कुछ उसका जवाब ही नहीं दिया। तो गौतम बुद्ध उसको उत्तर देते हैं, बोला देखिए आप मुझे 100 रुपये का नोट दीजिए। तो बोला वो शिष्य ने 100 रुपये का नोट दिया, बोला मैं नहीं लिया तो किसके पास रहेगा। अभी एक आदमी ने 100 का नोट दिया, आपने नहीं लिया तो नोट किसके पास रहेगा, उसी व्यक्ति के पास। वो बोला उसने मुझे इतना गाली दिया, कट्टु वचन बोला, लेकिन मैं उसको लिया नहीं, इसके लिए वो उसके पास रह गया। ये बोलेगा तो एक साधा इसमें समझ सकते हैं। अभी समझो हमको कोई बोल रहा है तुम सुअर का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, बोलने से हम हो गए थोड़ी ही, बोलने से हो जाएंगे। अगर हम अगर उसको नहीं लेते हैं तो वो किसके पास रह जाएगा, उसके पास ही रह जाएगा, अपमान करने वाले के पास ही रह जाएगा। इसके लिए वो बोलते हैं ज्ञान ऐसे वस्तु है, जो भी कुछ जो कोई बोल रहा है, कट्टु वचन बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो वास्तव में सत्यता नहीं होता है। इसके लिए इसमें इसके लिए विचलित नहीं होना चाहिए। ये एक भगवान बोल रहे, अगर सचमुच आप ये देहात्मा बुद्धि से बाहर आना चाहते हैं तो सम्मान की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए। उसमें और एक बता रहे हैं जो प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी चीज को है ना हम लोग देख के उसको ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का अनेक अवतार हुए हैं, इसमें एक अवतार का चित्र हमारा पास है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा अवतार है, किस किस को पता है, हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, एक और किसी को, आप लोग देख देख दिखाई दे रहे हैं ना अच्छा से। हाँ, तो देखिए सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि ये कौन सा अवतार, कौन सा अवतार है बताए। भूल है, ये हयग्रीव अवतार है भगवान का। आप लोग हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, भगवान का जो ये है दरवाजा है उसमें 28 अवतार का चित्रण किया गया है, उसमें एक अवतार हयग्रीव अवतार भी है। ओ, ये पहला लाइन का तीसरा वाला, ये पहला लाइन का तीसरा वाला देख रहे हैं। हाँ, नरसिंह अवतार का भगवान का बाजू में, इसको हयग्रीव अवतार बोलते हैं। तो मनुष्य को बहुत देखने से पता नहीं चलते हैं, क्या होता है प्रमाणिक ढंग से सुनने से और जिसको ज्ञान है वो बताने से जानकारी होता है। इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास क्यों जाना चाहिए। मैं एक सरल उदाहरण दिया, अभी भी यहाँ पर भक्त लोग होते हुए भी यहाँ 28 अवतार के बारे में भगवान का चित्रण किया गया है, कभी किसी को ध्यान नहीं गया होगा। आप देख के सब बता नहीं सकते कि कौन सा अवतार है। इसमें कपिल भगवान का है, ऋषभ देव का है, बहुत सारे अवतार है, आप ऐसा वो देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूछने से बता नहीं पाएंगे। और नरसिंह नहीं, नरसिंह भगवान का हिस्सा है, वो हयग्रीव अवतार। तो इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, किसके लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही वो बोलते हैं जन्म मृत्यु जरावादी दुख का हमेशा अनुभव करना चाहिए, जब भी इसका आप अनुभव करेंगे तो आपको फिर ये संसार रहने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप क्या करेंगे, भगवत धाम जाने के लिए चेष्टा करेंगे। जब तक आप सोचते रहेंगे मैं सुखी हूं सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक आपको इच्छा ही नहीं होगा भगवत धाम जाने का, और इस संसार में क्या असुविधा है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए उसमें ज्ञान में एक भगवान बता रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानो दर्शनम। इस प्रकार भगवान ज्ञान का कई विभाग बताए हैं, जिससे जानकारी करने के बाद हम इस देहात्मा बुद्धि से बाहर आ जाएंगे। ये 24 तत्वों से बनी जो शरीर में आत्मा बंधा हुआ है उससे वो मुक्त हो जाएगा, खाली ज्ञान से नहीं, उसको जब हम विज्ञान करेंगे अपना जीवन में आचरण करेंगे तभी वो इस हम भवबंधन से, ये देहात्मा का बुद्धि से बाहर आ जाएंगे। और यहां पर भगवान जो बता रहे हैं ये आत्मा और परमात्मा का बीच में क्या अंतर है, ये जो बता रहे हैं एक कि भगवान का जो हाथ है सभी जगह पे है, और भगवान का जो पांव है वो सब जगह है, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। तो ऐसे ही ईशोपनिषद में 14 और 5वां श्लोक में वर्णन है भगवान का अचिंत शक्ति के बारे में। अनेजेत एकम मनस जीवियो नैनो देवा आपनो बत पूर्वमसत तत्धावत अन्यात अतेति तिष्ठ ततस्पिन अप मातरिष्ट तधाति। आप पढ़ सकते हैं 165 का 4 नंबर श्लोक। अपना धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वाले को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं की बस में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। ईशोपनिषद का 4 नंबर श्लोक में भी ऐसा ही बताया गया और ईशोपनिषद का 5 श्लोक में भी ऐसे ही वर्णन है। तद्देति तन्नेजेति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते। वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर है फिर भी वे सबके बाहर भी है। तो ईशोपनिषद में भी भगवान का ये अचिंत शक्ति के बारे में वर्णन है। और यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं ब्रह्म संहिता का श्लोक से, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाति भाताभिस ताभिर एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निज सत्म खिलात्म भूत गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। तो बता रहे हैं कि भगवान अपना निज धाम गोलोक धाम में रहते हैं फिर भी वो सबके निकट भी है। और आप जो भी कुछ करते हैं तो आपको शिकार कर सकते हैं क्योंकि भगवान का इंद्रिया हमारा जैसा इंद्रिया नहीं है। भगवान ब्रह्म संहिता में बताया गया है, अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद्बुज्जल विग्रहस्य गोविंद मादि पुरुषम तमहं भगवने। भगवान का प्रत्येक इंद्रिया अनेक अन्य इंद्रिय का कार्य कर सकता है लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान सर्वत्र विराजमान है और जो जितना मात्रा में भगवान का शरणागति होता है और जो जिसी मात्रा में भगवान का भजन करता है उसका अनुरूपी भगवान उसको दर्शन देते हैं कि उसका जो पुकार को सुनते हैं। ये भी भगवत गीता में भगवान बताए गए हैं। यो यथा मा प्रपदन्ति तस्वथा मे हम भजाम्य हम मम भक्तानुवर्तन्ति मनुष्य पार्थ सर्वस। तो आप लोग देखे होंगे ये भी भगवत गीता महाभारत का एक अंग है उसमें द्रौपदी का कथा आती है। द्रौपदी को पांडव लोग जुआ में हार गए थे और उसमें दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन उनका भाई को कि उनको जाके भरी सभा में लेके आइए। तो उस समय वो द्रौपदी रजस्वला थी इसके कारण एक वस्त्र में थी। वो बता रही थी फिर भी दुशासन ने नहीं सुना उनको जबरदस्ती खींच के जो कौरवों की सभा में लाया गया और उनको पास 10,000 हाथी का बल था और उनको बोला गया कि ये 5 पति का पत्नी है इसके लिए वेश्या है उसको बस उल्लंघन करने में कोई अपराध नहीं है और दूसरा सन तुम उसको पूरा उल्लंघन कर दो वस्त्र सब खींच लो। तो जब भी दूसरा सन 10,000 हाथी का ताकत लेकर उनको वस्त्र खींचने का प्रयास की तो द्रौपदी मदद के लिए सबके तरफ सबको मदद मांगा। उस सभा में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बड़े बड़े जो उनका गुरुजन लोग बैठे थे सबको उन्होंने मदद मांगा लेकिन सब लोग चुप्पी बैठे कोई कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर जब भी दूसरा सब ने उनको वस्त्र को हरण करने का प्रयास किया वो अपना शक्ति से बचाव करने का प्रयास किया देखा कि अभी नहीं हो रहा है तो अभी क्या किया दोनों हाथ ऊपर करके भगवान बोला अभी मेरा कोई रक्षा करने के लिए नहीं है और आप मुझे बचाइए। तुरंत भगवान क्या किए वहां पर उपस्थित हो गए ऐसा नहीं सबको दिखाई दे रहे थे अदृश्य रूप में रह के इतना वस्त्र दिए कि वो दुशासन 10,000 वाला हाथी का बल वाला खींचते खींचते वो थक गया। इसका अर्थ है भगवान का हाथ सभी जगह है अपने हाथ से ही भगवान वस्त्र दिए होंगे ना लेकिन अभी लोग बोलते हैं हम भी पुकारते तो भगवान क्यों नहीं आते हैं। तो एक बाहर का भक्त ने कुछ भजन लिखा, अच्युतम केशवम श्रीधरम माधवम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी की तरह हो बुलाते नहीं। तो इसका अर्थ है हमारा पूर्ण शरणागति नहीं है, उस भावना से हम भगवान को बुलाते नहीं है, इसके कारण क्या होता है भगवान आते नहीं है। क्योंकि भगवान हमारा सबसे परम मित्र है, निकट संबंधी है, वो हमारा शरणागति के अनुसार ही हमारा व्यवहार करेंगे। तो इसके लिए यहां पर बताया गया भगवान का हाथ सर्वत्र है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। और दूसरा, जो हम भागवतम में एक उदाहरण देखते हैं गजेंद्र जी का, गजेंद्र जी वो गए थे सरोवर में पानी पीने के लिए अपना सब संबंधियों के साथ, उनका एक समूह था, हाथी समूह के साथ गए थे, और वो समूह का नेतृत्व कर रहे थे, लीडर थे, मुखिया थे। तो एक घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया, तो अपना उनका शक्ति पर बहुत तो गर्व था, इसके लिए उन्होंने 10,000 साल तक वो घड़ियाल के साथ युद्ध किए। और घड़ियाल जलचर जीव होने के कारण धीरे धीरे उसका शक्ति बढ़ता गया, और गजेंद्र का शक्ति क्या हुआ, कम होते गया। तो वो विकट परिस्थिति में अभी सोचे कि अभी मेरा शक्ति और काम नहीं करेगा। जब तक सोच रहे थे मेरा शक्ति से मैं अपना बचाव कर लूंगा, तब तक भगवान अनदेखा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो पूर्ण शरणागति हो गए, बोला भगवान अभी आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है, तो तुरंत ही भगवान क्या हो गए, आ गए। तो यहां पर बता रहे हैं भगवान हमारे से बहुत दूर भी है, लेकिन हमारा सबसे निकट भी है। जैसे ही कि लोग एक प्रश्न करते हैं कि आप भगवान को दिखा सकते हैं क्या, भगवत गीता में बता रहे भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन हमको देखने की दृष्टि चाहिए, और ऐसा प्रक्रिया है जिसे पालन करने के बाद ही भगवान दिखाई देते हैं। जैसे बताया गया है प्रेमांजनो छुरितो भक्ति बिलोचनेनो संतो सदैव हृदयेषु बिलोकयन्ति याम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। जिस प्रकार दूध में घी होता है कि नहीं, दिखता है नहीं दिखता है, उसका पद्धति है उसको देखने का। घी से दूध से दही बनाना होता है, और ये माखन भी होता है उसमें, दिखता नहीं है, लेकिन दही को मथने पर क्या होता है, माखन आता है, और माखन को गर्म करने पर घी होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब सरसों में भी तेल होता है, नारियल में भी तेल होता है, तिल में भी तेल होता है, दिखता है होता है कि नहीं, लेकिन उसको देखने का एक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही जब भी जिस प्रकार हम भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करके इस प्रकार हृदय को मंथन करेंगे, तो हमारा जो हृदय क्या निर्मल हो जाएगा, उसमें जो सब गंदगी बैठी है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, वो धुल जाएगा, तभी भगवान दिखाई देंगे। भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, तभी जाके भगवान दिखाई देंगे। और भगवान सर्वत्र विराजमान है, एक ब्रह्मा जी उसको बता रहे, एको प्यस रचयन्तु जगदंड कोटि यक्ति रक्ति जगदंड चयाय दंत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान बोलते हैं ये हर परमाणु में भी विराजमान है। तो कैसे परमाणु विराजमान है, ये हमारा श्रीमद् भागवतम में सृष्टि प्रकरण में इसका वर्णन है। जब भगवान कृष्ण पहले अकेले थे, वो अकेले में आनंद लेते थे, जब भी उनको और आनंद लेने की इच्छा हुई तो अपने को उन्होंने पहले राधा रानी के रूप में विस्तार किया, जो कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लाद का अर्थ है आनंद देने वाली शक्ति। उसके बाद भगवान ने और आनंद बढ़ाने के लिए अपने को बहुत रूप में विस्तार किए, विष्णु स्वरूप में, और राधा रानी ने अपने को बहुत लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान विस्तारित किए। तो इस प्रकार भगवान का जब ये आनंद प्राप्त करने की इच्छा हुई, अपने को भी बहुत रूप में विस्तार किए। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे संसार में भी आदमी पहला अवैवाहिक जीवन रहता है, विवाह क्यों करता है? बच्चे होंगे, बीबी होंगे तो और हम सब मिल के आनंद उठाएंगे। तो ऐसे ही भगवान ने फिर अपना पुत्र के रूप में अपना भिन्न अंश को प्रकट किए। ये जो विष्णु स्वरूप को रूप में विस्तार हुए उसको स्वांश कहते हैं, भगवान का निजी विस्तार। और जीवात्मा क्या? भिन्न अंश। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, अपरायम तूते अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाबाहु ये धायतम जगत। भिन्न प्रकृति बोलेगा तो भिन्न अंश, जीवात्मा भगवान का भिन्न अंश यानी भगवान का सेवक है। तो ऐसे अनेक भिन्नांश को प्रकट किए और स्वांश भिन्नांश आध्यात्मिक जगत में रहते थे और भगवान का सेवा में नियुक्त थे। और उसमें से 25% जो भिन्नांश का जीवात्मा का मन में इच्छा हुआ कि अभी भगवान का धाम नहीं रहेंगे, अलग होके आनंद लेंगे, भगवान ही क्यों मालिक है, हम भी मालिक बनेंगे। तो भगवान बोले ये संभव नहीं है इस जगत में। फिर उनके लिए भगवान ने एक ब्रह्मांड बनाया। तो कैसे बनाया? तो भगवान ने अपना ही को विस्तार किए कारण सही विष्णु के रूप में, और उनका निजी पसीना से एक सागर समुद्र बनाया, उसको कारण सागर कहते हैं। और भगवान का रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ और भगवान ने उसमें प्रवेश किए। ब्रह्मांड में देखे कि वो अंडा का आकार था और ब्रह्म बोलेगा तो भगवान उसपे प्रवेश किए, इसके लिए उसका नाम हुआ ब्रह्मांड। देखिए ब्रह्मांड में प्रवेश किए तो देखिए सब अंधकार है, कुछ है नहीं। फिर अपना पसीना से जल से आधा उसको भर दिए, उसको बोलते हैं गर्भोदक साई सागर। गर्भोदक के सागर के ऊपर भगवान विष्णु शेष साई अनंत शयन ऊपर शयन करने लगे, उनका नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। और जब उत्पन्न हुआ भगवान ने उसको सभी प्रकार का जो संसार बनाने के लिए जितना उपादान की जरूरत होता है वो दिए, उसका योजना दिए, उसका रूपरेखा दिए, बुद्धि दिए, ज्ञान दिए, बोले अभी संसार का रचना करो। श्रीमद् भागवतम का तीसरा चौथा स्कंध में ये एक विषय वस्तु है, स्वर्ग और विसर्ग। तो वो सब उपादान लेके पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार उसको लेके भगवान जो रूपरेखा दिए थे उसको डिजाइन जो बोलते हैं और प्लान योजना उसको लेके उन्होंने ये सब सृष्टि की रचना कर डाली। लेकिन ये सब जड़ वस्तु होने के कारण एक भी चलाए मान नहीं हुआ। फिर भगवान ने अपने को परमात्मा का रूप में विस्तार करके सब में अंडांतरस्थ परमाणु स्वयंतरस्थम प्रत्येक परमाणु में प्रवेश किए, तभी ये संसार चेतन वस्तु का संग से स्पर्श से फिर चलाए मान हुआ। इसके लिए यहां पर बता रहे हैं कि भगवान प्रत्येक परमाणु में भी विराजमान है, ब्रह्मा जी भी उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एको प्यसो रचयंतु जगदंड कोटि यच्छक्ति रक्ति जगदंड चया यदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार भगवान प्रत्येक परमाणु में भी विराजमान है। और यहाँ पर प्रभुपाद एक बात बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्ता प्रयोच्छति तदा हम भक्ता उपरूतम स्नानी प्रयता आत्मन। अगर भगवान हम से बहुत दूर है तो क्यों बताते कि कोई पत्र पुष्प फल और जल दे अर्पण करेगा तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो जानने दीजिए पहले की बात, इस जब भी कलयुग में कुछ 500,000 साल पहले ऐसे बहुत लोगों ने जो भगवान को अर्पण किए तो भगवान ने उसका स्वीकार किए। सिन्हा जी का एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, सिन्हा जी का एक परम भक्त थे, वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ पुष्प लेके भगवान को चढ़ाते थे। एक दिन वो पुष्प खरीदने के लिए गए तो एक बहुत सुंदर पुष्प का एक टोकरी था जो फूल, उस समय वो मुसलमान शासक जो बादशाह था उनका एक सेवक आ गया और वो मुसलमान जो राजा के लिए भी वो पुष्प की आवश्यकता थी, तो दोनों में एक प्रतिस्पर्धा हो गई। तो उनको चाहिए था, वो कीमत था उसका 1 रुपया, तो बादशाह का सेवक ने बोला मैं 2 रुपया देता हूं, ये बोला 10 रुपया, वो बोला 20 रुपया, ये बोला 100 रुपया। ये बोला 1,000 रुपया, बोला 1,00,000 रुपया। तो राजा का सेवक सोचा अगर मैं 1,00,000 में खरीदूंगा तो राजा मुझे मृत्यु दंड भी देगा, नौकरी भी निकाल देगा, और वो फूल को छोड़ के चला गया। ये बोला अभी तो उनका पूरा संपत्ति को दे के वो पुष्प को लेके शिवनाथ जी के लिए हार बना के शिवनाथ जी के गले में जब चढ़ाया गया तो शिवनाथ जी का गला झुक गया। तो पुजारी लोग आश्चर्य हो गए, भगवान से बोले भगवान आज क्यों आपका गला झुक गया? बोला मेरा ये जो भक्त का जो हार है मेरा आज गला झुका दिया। तो ऐसे ही कहने का अर्थ है अभी भी भगवान बहुत दूर हो तो ये भी विग्रह के रूप में हमारा सबसे नजदीक है, और हम जैसा उनको भावना से सेवा करेंगे, शरणागति होंगे, उसका अनुसार ही भगवान हमारा ये करेंगे। आप जगन्नाथ पुरी में देखेंगे ये अभी माघ पूर्णिमा को भगवान का एक पोशाक होता है, पद्म भेष कहते हैं उसको। एक भक्त था वो रास्ता में आ रहा था, वो रामचंद्र जी का भक्त था, उसको देखा कि बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर लाल कलर का पद्म से भरा हुआ है, तो उसका मन में भगवान को अर्पण करने की इच्छा हो गई। तो पूरा वो सरोवर में जाके पूरा वो पद्म फूल को संग्रह किया, और लेके आते आते बहुत शाम हो गया, और वो पुजारी लोग को अनुरोध किया कि अभी हमारा ये जो पुष्प है भगवान को जगन्नाथ जी को चढ़ा दीजिए। तो पुजारी लोग बोले नहीं नहीं अभी बहुत टाइम हो गया है, हमारा जो बड़ा श्रृंगार देश का समय हो गया, अभी उसको नहीं करेंगे। तो वो भक्त इसे ही लेके उधर ही फूल लेके वो रो रहा है, बोला भगवान मैं इतना कष्ट करके आपके लिए लाया, आप ये सेबो लोग उसको आपको अर्पण करने के लिए राजी नहीं हो रहे। तो उतने में बहुत प्रयास करने के बाद भी वो जो उनका जो श्रृंगार हुआ नहीं, भगवान आदेश दिए कि मेरा भक्त है जाओ उसका सब पद्म फूल लेके आओ, उसका हार बना के मुझे सजाओ, तभी मैं संतुष्ट हूंगा। तो वो पूरा फिर फूल लेके आके उसको हार बना के भगवान को सजाए। तो आज भी उनका याद में जो माघ पूर्णिमा को जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को पद्म भेष होता है। तो भगवान बहुत दूर होते भी हमका सबसे नजदीक है विग्रह रूप में, लेकिन हमारा जैसा शरणागति होगा, जैसा हम उनका मनोभाव से सेवा करेंगे, ऐसे ही भगवान स्वीकार करेंगे, और आत्मा ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए यहां पर भगवान आत्मा और परमात्मा में भेद बता रहे हैं कि भगवान जो भगवान का हाथ पैर आंखें मुख सर्वत्र है, लेकिन जीवात्मा का नहीं। और आगे भगवान ऐसा आत्मा परमात्मा का बहुत सारे श्लोक में क्या भेद वर्णन करेंगे, क्योंकि ये जानने का विषय वस्तु है। जब हम भगवान की महानता जितना जानकारी करेंगे, हमारा इतना झुकाव होगा भगवान के प्रति, इतना हमारा शरणागति होगा। इसके लिए यहाँ पर भगवान आत्मा और परमात्मा का भेद का अभी वर्णन आरंभ किए, आगे बहुत सारे श्लोक में इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य